सफा नंबर 141, और वो ये कि जिना सियासतदान है लेकिन पंडित जी मुहब्बे वतन, इससे ये कहाँ साबित होता है कि जिना में हुब्बे वतनी की कमी है या ये कि पंडित नेहरू बहुत बड़े सियासतदान हैं। मेरा कहना तो ये था कि पंडित नेहरू की नज़र हकायक पर नहीं जैसा कि एक सियासतदान की होनी चाहिए। वो जज्बात की रो में बह रहे हैं, बा गो बसबब जज्बा हुब्बुल वतनी, लेकिन ये अमर सियासत के मुनाफी है। बरक्स इसके जिना सियासतदान हैं, इनका मिजाज कानूनी है और वो खूब समझते हैं हिंदुस्तान का असल मसला क्या है। ये भी कि हिंदुओं और अंग्रेजों में जो कशमकश जारी है, इसकी हकीकी नौवियत क्या है। वो ये नहीं कर रहे कि हुब्बुल वतनी के जोश में वाकयात से आंखें बंद कर लें, वही तो हकीकत में मुहब्बुल वतन है। नंबर एक, जिना इज द पॉलिटिशियन यू आर अ पोर्ट्रेट। दो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी पंडित जी ने हजरत अल्लामा के इन अल्फाज को इसी तरह पेश किया है कि कायदे आजम पर इनकी बर्तरी का पहलू निकले। राकमुल हरूफ की राय में हमें इस पर सख्ती से गिरफ्त करनी चाहिए। ये कायदे आजम की स्वान उम्री हो या तरीके पाकिस्तान की कोई तारीख, पंडित नेहरू की इस राय की पुरजोर तरदीद जरूरी है, बिलखसूस जब हजरत अलामा साफ साफ पंडित नेहरू पर कायदे आजम की बर्तरी साबित कर रहे थे। मियाँ साहब ने हजरत अलामा के अरशादात सुने तो इनका इत्मीनान हो गया, लेकिन अब सवाल यह था कि हजरत अलामा के इस कॉल की जो गलत तबीर की जा रही है, अगर इससे फायदा उठाते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई तो इसका उजाला कैसे होगा। जाहिर है इसकी कोई सूरत नहीं थी, अगर थी तो ये कि मुसलमान मुतहद हों, जिना के हाथ मजबूत करें और इनकी क्यादत से फायदा उठाएं, और यही हजरत अलामा का अरशाद भी था। मियाँ साहब ने कहा कुछ यही मुश्किलात हैं जिनके पेश नजर एक ख्याल है। सफा नंबर 142, इजाजत हो तो अर्ज करूं, हजरत अलामा ने फरमाया क्या ख्याल है कहिए। मियाँ साहब कहने लगे ख्याल ये है कि लीग का इज्तिमा लाहौर में होना चाहिए, लेकिन ये इज्तिमा कैसे होगा, मुझे डर है अगर ऐसा हुआ तो यूनिटरी पार्टी बेग से अलग हो जाएगी, इज्तिमा नाकाम रहेगा। अरशाद हुआ मेरी तो शुरू ही से राय थी कि इस पार्टी को लीग में शामिल नहीं करना चाहिए, बल्कि वो शमूलियत पर इसरार भी करे तो इसकी दरख्वास्त ठुकरा दी जाए, रहा इज्तिमा। सो मियाँ साहब आप घबराते क्यों हैं, हिम्मत कीजिए, आपने हिम्मत से काम लिया तो मुसलमान आप ही के साथ होंगे। एक, ये ख्याल देर से चला आता था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अरशादात लाहौर में मुनकद होना चाहिए। चुनाचा हजरत अलामा जून 1937 में भी कैद आजम के नाम से एक खत में अपनी इस राय का इजहार कर चुके थे, और यूं भी जब कभी मौका मिलता अपनी इस राय पर इसरार करते। हजरत अलामा का इरशाद था कि पंजाब इस्लामी अक्सरियत का कलब है, अगर लीग का जलसा लाहौर में मुनकद हुआ तो इससे इस्लामी पंजाब के इतिहाद और तंजीम को तकवीयत पहुंचेगी। दो, इसलिए कि यूनियनिस्ट पार्टी ने ज़रात और गैर ज़रात पेशा आबादियों की बेमानी तकसीम से जिस तरह मुसलमानों ने पंजाब में तफरका व इंतशार का बीज बोया था, वैसे ही सूबाई और मुल्की मसाइल के इम्तियाज से जो सिर्फ इस जमात की मुनाफिकाना जहनीयत की पैदावार था, इसने इस्लामी हिंद के इतिहाद में रखना डालने की कोशिश की। इस जमात को ना तो मुसलमानों के 102 बहबूद का ख्याल था, ना मुल्क की आज़ादी, ना इस्लामी कौमियत के अहया का। जमींदारों का ये टोला अंग्रेजी हुकूमत के जेरे साया। और सफा नंबर 143, हिंदुओं की रजा जोई से सिर्फ अपना इकतदार कायम रखना चाहता था, इसकी सारी कोशिश ये थी कि किसी हीले से मुस्लिम लीग पर काबज हो जाए और फिर इसे खत्म कर दे। हजरत अलामा इनके इस इरादे को खूब समझते थे और इसलिए ये बार बार तंबीह फरमाते कि इस जमात को लीग में शामिल ना किया जाए। चुनचा बाद के वाकयात से इस अमर की तस्दीक भी हो गई कि हजरत अलामा की राय बड़ी साहिब थी। तीन, लीग का इजलास लाहौर में मुनक्कद ना हुआ, लेकिन अलामा हजरत अलामा की पेशन गोई के आप हिम्मत कीजिए, मुसलमान आप ही के साथ होंगे, हुरफ ब हुरफ पूरी होगी। हकीकत यह है कि यूनियनिस्ट पार्टी का जोर हजरत अलामा ही ने तोड़ा, गो इस वक्त कोई नहीं समझता था कि ऐसा हो रहा है। मुकर्रर अंका, मैंने पंडित नेहरू की इस मुलाकात को सिर्फ हजरत अलामा के अरशादात तक महदूद रखा है, यानी इस गुफ्तगू तक जो उन्होंने खुद मुझसे फरमाई। वैसे इस मुलाकात का हाल मियाँ शफी मीम शिम को भी मालूम है। अलावा अजी हजरत अलामा ने चौधरी साहब से फरमाया था कि 1906 से लेकर ताई दम 1938 तक मैंने हिंदू मुस्लिम तलुकात पर तबसरा करते हुए पंडित जी को एक एक वाक्य के पेश नजर समझा दिया था कि इन मसहलत से ग्रेज नहीं करना चाहिए, लीग और कांग्रेस में मुफाहमत जरूरी है। डॉक्टर आशिक बटालवी ने भी अपनी किताब इकबाल के आखिरी 2 साल में इस मुलाकात की जुजवी रुदाद राजा हसन अख्तर महरूम के हवाले से कलम बंद किया और लिखा है कि इस मुलाकात के दौरान में मियाँ फिरोजुद्दीन अहमद महरूम और राजा हसन अख्तर महरूम भी जवेज मंजिल में मौजूद थे। हजरत अलामा से अगरचा मैंने ये दरियाफ्त तो नहीं किया कि अलावा इन हजरात के जो पंडित नेहरू के साथ जवेज मंजिल आए और कौन लोग, सफा नंबर 144 शरीके गुफ्तगू थे, लेकिन मेरा कयास है कि चौधरी साहब और राजा साहब जैसा कि ममूल था सरे शाम जवेद मंजिल आए होंगे और बहुत मुमकिन है पंडित जी के आने तक वहीं ठहरे रहे हों। मीम शीम का तो खैर क्याम ही जवेद मंजिल में था, वो कहाँ तक शरीके गुफ्तगू हुए मुझे मालूम नहीं। चौधरी साहब यकीनन पहले तशरीफ लाए होंगे, राजा साहब बाद में और फिर कर्शी साहब भी, लेकिन इन हजरात में से कोई भी तो शरीके गुफ्तगू नहीं हुआ, वरना जरूर था कि हजरत अलामा मुझे से इनका जिक्र करते। मियाँ फरोजुद्दीन का आना तो कतन करीन कयास नहीं। बहरहाल इस गुफ्तगू के सिलसिले में दो बातें काबिले गौर हैं और दोनों अपनी जगह पर बड़ी अहम। एक तो ये कि हजरत अलामा ने जब पंडित नेहरू से पूछा कि जहां तक इश्तराकी निजामे जिंदगी का तल्लक है, कांग्रेस में आपके हम ख्यालों की तादाद कितनी है, तो उन्होंने कहा तकरीबन निसफ दर्जन। इस पर हजरत अलामा ने फरमाया तो क्या मैं 10 करोड़ मुसलमानों को 6 आदमियों की खातर आग में झोंक दूं। आशिक बटालवी इकबाल के आखिरी 2 साल सफा 548 549, लेकिन हजरत अलामा ने बावजूद तफसील के मुझसे इसका जिक्र नहीं किया। यूं भी मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई। दूसरी अहम बात है कि इस मुलाकात के बारे में खुद पंडित जी के इंकशाफात हिंद में अपने इरशादात इनका बयान है। डॉक्टर साहब ने मुझे याद फरमाया, हालांकि इस मुलाकात की तहरीक डॉक्टर चक्रवर्ती ने की थी। हमारे दरमियान किस कदर इश्तराक था, मैंने महसूस किया इनके साथ मिलकर काम करना कैसा सहल है। पुरानी यादें ताज़ा हो गई, मैं इनकी शायरी का मदा हूँ, मैं ज़्यादातर इन्हीं की बातें सुनता रहा। मैं खुश था कि वो मुझे पसंद फरमाते हैं, मेरे मतलब अच्छी राय रखते हैं, मगर फिर ये सब कुछ कहने के बाद आगे चलकर ये भी कहते हैं कि इकबाल तकसीमे हिंद सफा नंबर 145 यानी पाकिस्तान के नज़रिए को नापसंद फरमाते थे। हालांकि पंडित जी की ये राय एडवर्ड टॉम्सन के इस बयान पर मबनी है जो सर ता सर गलत और जाल साबित हो चुका है। आशिक बटालवी इकबाल के आखिरी 2 साल 1961 बाब 13 सफा 555 556 नीज देखिए इस तदारक किताब के आखिर में सफा नंबर 146 सहशंबा 25 जनवरी दिन भर बारिश होती रही, तीसरे पहर मतला किसी कदर साफ हुआ तो जुवेद मंजिल पहुंचा। हजरत अलामा हसबे ममूल बिस्तर में लेटे आराम फरमा रहे थे, कभी कभी हक का हुक्के का कश ले लेते। अली बख्श हाजिर था, मैंने मिजाज पूछा तो उन्होंने मौसम और मौसम के सिलसिले में तबीयत पर अच्छे बुरे असरात का जिक्र छेड़ दिया। फरमाया पिछले चंद दिनों से सर्दी के बायस अवारज में कुछ शिद्दत पैदा हो गई है, मौसम का इतदाल पर रहना जरूरी है। मौसम इतदाल पर रहता है तो तबीयत ठीक रहती है, फौरी तगैयरात का असर बड़ा नागवार होता है। फरमाया दुआ का इस्तेमाल जारी है, बल्कि एक आध बार एलोपैथिक दुआ का भी इस्तेमाल कर चुका हूँ। दवाओं का भी तबीयत की मुनासबत और अदमे मुनासबत से बड़ा तल्लक है। इस सिलसिला में हमारी तिब की रवश फितरत के ऐन मुताबिक है, किसी एक दवा ही को ले लीजिए, मसलन खमीरा गौजुबा के सादा भी है और मोतदिल भी, जवाहर वाला और शायद इस किस्म का कोई और मरकब भी, और ये सब इसलिए कि तबा मुख्तलिफ हैं। फिर फरमाया मिजाज का इख्तलाफ एक हकीकत है, मिजाज का लिहाज रखना जरूरी है। मेरी जात का मसला छिड़ गया, मैं एक तरह से कुछ भी नहीं कर रहा था, सवाल ये था कि कुछ करने के इम्कान हैं भी या नहीं। हैं तो क्या, फरमाया क्या सार्टन का तर्जमा हो रहा है, एक किसी फौरी मगर आर्जी तकलीफ के पेश नजर, इसलिए कि हकीम साहब तो हैदराबाद में थे, इनसे जरा जरा सी बात में रजू करना नामुमकिन था। सहूलत सी में थी कि करशी साहब या डॉक्टर जमीयत सिंह के मशवरे से कोई दवा इस्तेमाल कर ली जाए। नंबर 2 मुकदमा तारीख साइंस इस जॉर्ज सार्टन का तर्जमा जो राकम उल हरूफ के कलम से मजलस सफा नंबर 147, तरक्की अदब लाहौर के ज़ेर एहतमाम शाया हो चुका है। मैंने अर्ज़ किया कि तर्जमा जारी है, अरशाद हुआ इस किताब की खूबी से तो इनकार नहीं। मैंने मौलवी साहब को इसके तर्जमे पर आमादा किया तो इसलिए कि मुसलमान उलूम तबी में अपने कारनामों से वाकफ़ हों और इस सर नौ इन उलूम की तहसील करें। इनकी तवज्जो अफसानों की बजाय हकायक पर होनी चाहिए। फिर भी अहले यूरोप जब कभी मौजू पर कलम उठाते हैं तो एक ख़ास नुक्ता नज़र से, जिसकी सेहत और अदम सेहत का लिहाज रखना ज़रूरी है। तुमने क्या मुसन्नफ़ के अंदाज़ फ़िक्र में कोई ऐसी बात देखी जो महल नज़र हो? नंबर एक, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक मरहूम, ये 1932 का जिक्र है जब हजरत अलामा ने मौलवी साहब की तवज्जो इस किताब की तरफ मनअतफ करवाई और मौलवी साहब ने इसका एक बाब का तर्जमा इम्तिहानन मेरे जिम्मे किया। तर्जमा इन्हें पसंद आया तो मुझसे कहा कि इसकी तकमील कर दूं, लेकिन 1933 में कुछ मेरे जाती हवाल और फिर आगे चलकर हजरत अलामा की तवील अलालत के बायस तर्जमे का काम रुक गया। ताअंका इसकी इब्तदा 1938 से पहले ना हो सकी। तकमील 1940 में हुई दिल्ली में, लेकिन जंग के बायस कागज़ ना मिल सका, लिहाजा अशात रुक गई। मैंने अर्ज़ किया, मुसन्नफ़ कहता है कलाम की इब्तदा इस गलत ख्याल से हुई कि अकल और ईमान में तत्बीक मुमकिन है। हिंदू बुद्ध यहूदी ईसाई और मुसलमान सब इस गलत फहमी में मुबतला रहे। ये जेन इंसानी का एक मखसूस और आलमगीर मजर है। यूं साइंस की तरक्की रुक गई। दो, साइंस की तरक्की में रुकावट पैदा हुई तो इसकी वजह थी दुनिया कदीम का हकाइक से ग्रेज। इन हकाइक से जो अबारत है हमारे महसूसात व मदरकात, यानी ज़ात इंसानी के गोना गो हवाल, आलम तारीख और आलम फितरत, इनके हवादस और सफ़ा नंबर 148 मज़ाहिर से, जैसा कि दुनिया कबल इस्लाम की आम रवश थी। इस्लाम आया तो इसने इंसान की तवज्जो हकायक की तरफ मनअतफ करवाई। इनके मुताले और मुशाहदे पर जोर दिया। जब तक ऐसा ना होता साइंस की तरक्की में जो रुकावटें थी कैसे दूर होती? मैंने अर्ज़ किया, मुसन्नफ़ का दावा है कि इल्मे कलाम की इब्तदा सबसे पहले बुद्ध मत में हुई। ये इसलिए कि बुद्ध मत का नुक्ता नज़र सरता सर इल्मी था, मजहबी नहीं। बुद्ध गोश कलाम के इस मज़हब का सबसे बड़ा नुमाइंदा है। बुद्ध मत ही के ज़ेरे असर हिंदुस्तान में इल्मे कलाम को तहरीक हुई। शंकर का गौरव फिक्र इसका मराज कमाल है। चीन में अलबत्ता कलाम का नशोनुमा बहुत आगे चलकर हुआ। चीनी इल्मे कलाम का तल्लक नोकन फ्योशी तहरीक से है। तीन, लिहाजा जब बुद्ध मत ने मत यानी मजहब की शक्ल अख्तियार की तो अकल और ईमान की तकबीत के पेश नज़र मुतकला मानना गौरव फिक्र नागजीद हो गया। नंबर एक, 390 काफ मीम के करीब बुद्ध गया में पैदा हुआ, वहीं और फिर अनुराधापुर लंका में फरोग पाया। पाली जुबान में बुद्ध मत पर एक जख्मीम और जामिया किताब बाउनवान वसदा मग राह सफा का मुसन्नफ। नंबर दो, शंकर मुतकल्लम नहीं था। शायद मुसन्नफ ने इस बिना पर कि इसका बुद्ध मत का रद्द किया इसे मुतकल्लम ठहराया, वरना शंकर का दर्जा इससे कहीं ज्यादा बुलंद है। देखिए गुलशन राजे जदीद जबूर अजम दगर इज शंकर व मंसूर कम गो अनल हक गोवे व सदीक खुद ही शो। मैंने ये भी अर्ज किया कि मुसन्नफ के नज़दीक अलहयात का वजूद देर तक साइंस की तरक्की में हार्ज रहा। मसलन मीमा नसा फलसफा है कि इसकी इमारत ही इस बिना पर तबीर हुई कि वैद गैर मखलूक है। मीमा नसी नुक्ता नजरिया नहीं था कि एक ऐसी हकीकत को समझने की कोशिश की जाए। सफा नंबर 149, जो हर लहजा मुतगैर और मलबस दिखाई देती है, बल्कि ये कि विदों की तलीम अटल और गैर मतबल है। यही कुछ मुसन्नफ ने मुसलमानों के बारे में कहा है कि वो भी कुरान पाक को गैर मखलूक मानते थे, और नहीं भी तो इनका अकीदा ये था कि कुरान मजीद की तलीमात अब्दी और मुबर्रा अनुल खता है। मालूम होता है कि मुसन्नफ दबी जुबान से ये कहना चाहता है कि हिंदुओं और मुसलमानों की यही रवश थी जिसने इनके यहाँ साइंस की तरक्की को रोक के रखा। तीन, प्राचीन हिंदुस्तान के 6 निज़ामात फलसफा सांख योग मीमांसा वेदांत विशिका और न्याया में से एक, जिनका तल्लक 6 मुख्तलिफ और कई एक सूरतों से में मुतजाद नुकता हाय नजर दर्शन से है। मीमा नसा जे मनी से मंसूब है, जिसके हालात जिंदगी से हम कतन बेखबर हैं। मीमा नसा के मानी है फिक्रे अमीक, यानी वीदों की रूह से हमारे अमाल व अफाल, रस्म व अबादात का जो अंदाज होना चाहिए, इन इन में गौर व फिक्र, और इस पहले से इनकी तशरीह व तौज़ीह जैसे वैदानत अबारत है, इस इंतहाए अनत सदाकत से जो वैदों में मौजूद है। मीमा नसा चार हैं, परवा करम अतर और ब्रह्म। करम और प्रो का तल्लक मुतलक मानना मसाइल से है, जैसा कि मुसन्नफ का ख्याल है, लेकिन ये राय सती है और हिंदू नुक्ता नजर से बेखबरी का नतीजा। चार मसला खलक कुरान की तरफ इशारा है, मुखालफीन व मुवाफकीन का नजाह लफजी था, हकीकी नहीं था कि इन्हीं कुरान पाक के दर्जा हजियत में इख्तलाफ होता। इरशाद हुआ साइंस की तरक्की के रुकने या ना रुकने का इन्हसार तो इस बात पर है कि हम इस मसले में जिसका तल्लक अक्ल और ईमान के मफरूजा नजा से है, क्या रवश इख्तियार करते हैं। मसीह दुनिया में इस नजा ने जो शक्ल अख्तियार की, वो इन हालात के बायस जो मसीह दुनिया में कार फरमा थे, ये गोया मगरबी जहन का एक मखसूस मंजर है। लेकिन ये कहना कि आलम इस्लाम में भी इस नजा की वही नबीयत थी जो ईसाइयों में सरता सर गलत है। सफा नंबर 150। मुसलमानों में इस नजा, बल्कि ये कहना चाहिए कि इस मसले ने जो शक्ल अख्तियार की, इससे साइंस की तरक्की में मतलब फर्क नहीं आया। फरमाया रहा इल्म कलाम, सो लफज कलाम बजाय खुद गौरव तलब है। कलाम इसको लास्ट्रम्ज नहीं है कि अकायद मजहब की तत्बीक किसी मखसूस फलसफे से की जाए, जैसा कि मसीह कलाम से मकसूद था। आलम इस्लाम में कलाम से मकसूद था मजहब पर फलसफियाना गुफ्तगू। फिर इसके मसाइल भी इल्मो हिकमत के मसाइल थे, अकायद नहीं थे कि इनमें अक्ल को मुतअल्लिकन दखल ना होता। मुसन्नफ की नज़र शायद इस मुशाबत पर है जो बकौल इसके दुनिया के मुख्तलिफ मजाहिब कलाम में मौजूद है, लेकिन ये मुशाबत सती है, हकीकी नहीं है। और इसकी एक वजह यह है कि बुनियादी तौर पर मसला हर कहीं एक था। सानिया कोई मसला खला में सर नहीं उठाता, किसी न किसी अलमी और अकली फिजा में पैदा होता है। एक अहले यूरोप के नज़दीक मजहब की तत्बीक किसी एक मजहब फलसफा बिलखसूस हिकमत यूनान से या मजहबी नोशतों यानी मंकूल के एहतराम में मकबूल से बेअतनाई, लिहाजा इन हकायक से अगराज जो साइंस का मौजू है और इनकी बजाय महज लातायल क्यास अराइयों और मंतकी मोशगाफियों पर इत्तफाका देखिए सार्टर मुकदमा तरीके साइंस जिल्द अव्वल फजल कलाम। लेकिन हमने इसको लास्ट स्टंस को कलाम से तबीर किया तो महज असलाहतन यानी अदारे आदाए मतलब में सहूलत के लिए, वरना कलाम अबारत है फलसफा मजहब से, और ये वो मबजस है जिस पर मगरब ने हाल ही में बकायदा तवज्जो की है। दो अक्ल और ईमान का के अक्ल और ईमान क्या एक दूसरे के मुनाफी हैं या मवीद। एक यानी वो ज़हनी फ़ज़ा जो करने अव्वल के सियासी व इज्तमाई हवादस और मसीही यहूदी और वतनी अकायद से एक इस्लामी अकायद के तसादम ने पैदा की, और जिसमें इस ज़माने की नीम मजहबी नीम फलसफियाना तहरीकत के साथ साथ यूनानी फलसफा और ईरानी सनवियत बुद्ध जमियत और वैदानत इश्तराक और तसूफ सब ने हिस्सा लिया। सफा नंबर 151। अरशाद हुआ कलाम इसको लास्टम्स नहीं है, जैसा कि अहले यूरोप गलती से समझते हैं। कलाम मुसलमानों की इजाद है और इसका नशोनुमा आलम इस्लाम से मखसूस। दो इसलिए कलाम से मकसूद था मजहब की अकली असासात की जस्तजू, देखिए तश्कील जदीद अलहियात इस्लामिया खुतबा अव्वल। गोया एक मसला तो अकायद की तत्बीक का है किसी मखसूस निज़ाम फिक्र से, या अकायद की फलसफियाना तबीर, लिहाजा किसी मखसूस मजहबी फलसफे का दूसरा बुनियादी और हकीकी यानी इन हकायक के अदारक का है, जिनके शऊर गैर अकली वास्तों से होता है और जिनमें अक्ल और ईमान बज़ाहिर एक दूसरे के हरीफ नजर आते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के लिए नागजीर लिहाजा जिसे ना तो ये के नज़रअंदाज किया जा सकता है कि इनका तल्लक ज़हन इंसानी के दो मुख्तलिफ तकाज़ों से है और इन्हें अपनी अपनी जगह पर आज़ाद छोड़ देना चाहिए, ना ये मुमकिन कि किसी एक को दूसरे पर तरजीह दी जाए। पहली सूरत में हम रूह और मादे की सनवियत पर जोर देंगे तो ईमान और अक्ल का रिश्ता कट जाएगा, जिंदगी की वहादत बाकी नहीं रहेगी और हमें दीन व दुनिया, रियासत और कलीसा का इम्तियाज पैदा करना पड़ेगा। बसूरत दीगर एक का वजूद दूसरे को कालदम कर देगा। ये दोनों सूरतें खुद जिंदगी को गवारा नहीं। सिलसिला गुफ्तगू जारी रखते हुए फरमाया, ये सही है कि यहूद और ईसाइयों में भी मुतकल्लमीन पैदा हुए और उन्होंने कोशिश की कि अपने अकायद की तत्बीक फलसफा यूनान से करें, लेकिन बात दरअसल ये है कि मुसलमानों से पहले अलहयात का कहीं वजूद ही नहीं था। ईसाइयों के यहाँ तो अक्ल का नाम लेना भी जुर्म था, रहे दूसरे मजाहब, सो इनके यहाँ बाद मसाइल भी एक इल्मी रवश जरूर अख्तियार की गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि अलहयात का इरतका बतौर अलहयात के होता। यूं कहने को मसीह दुनिया में भी सफा नंबर 152 अकायद पर बहस हुआ करती थी। दरअसल मुसन्नफ की गलती यह है कि इसने मसीह अकायद और यूनानी फलसफे की तत्बीक को कलाम से तबीर किया। ये कलाम नहीं है, इसको लास्ट लास्ट सिज्म है। हमें दोनों में फर्क करना चाहिए। कलाम मुसलमानों की खास चीज है। 3, ये मुस्लिम है कि यहूदी और मसीह इल्म कलाम का इंतहाई नशोनुमा इस्लामी इलम कलाम से मौखर है। ये वो हकीकत है जिसका अहले मगरब को खुद भी एतराफ़ है। नंबर 1, अलहयात यूनानी जबान में थियोस बामानी खुदा और ओलोजी बामानी इलम यानी, लिहाजा थियोलोजी दूसरा नाम था माबाद अत्तबियात का। बानी अरबी जबान में अलहयात की इस तरह वाजे हुई और ज़ात अहलिया की बहस इसका मरकजी नुकता करार पाई। हमें मालूम है कि अहले यूनान के इसी ख्याल के पेश नज़र अफलातून को इलाही थायोलोगेन कहा गया और फिर एक मौजू अरस्तन तलाशी तसनीफ अलहयात अरस्तु थियोलॉजी ऑफ अरस्तु जिसका जमाना अरस्तु से बड़ा मौखर है को बहुत काफ़ी शोहरत हासिल हुई। शायद इसी यूनानी रवायत से इस तखलास का नतीजा था कि अब्बासी अहद में अलहयात के लिए इल्मे कलाम की इस्तलाह वाजे की गई। मतलब था ज़ात अलाहिया के हवाले से माबाद अत्तबई मसाइल पर गुफ्तगू और बाशक्ल अकायद इनकी अकली तोजीह। यही वजह है कि अलहयात ने एक बाकायदा निज़ाम फिक्र की शक्ल अख्तियार की तो आलम इस्लाम में। 2, जैसा कि कलीसा की तारीख से जाहिर है। 3, बतौर फलसफा मजहब और जो गोया अब एक बाकायदा निज़ाम फिक्र की शक्ल अख्तियार कर रहा है। 4, ऐसे अकायद डोगमस पर जिनमें अकल का कोई दखल नहीं, ना इनकी हसीयत हकीकी मसाइल की है। मसलन अकानियम सलासा में से किसी एक के दर्जा अलवहीयत या बजाय खुद सलासियत या हाशे रबानी की बहस सफा नंबर 153। 5, और जाहिर है इसका इर्तका आलम इस्लाम ही में होता है। ये इसलिए कि इस्लाम ना आम मानों में मजहब है, ना महज एक इखलाकी या रूहानी या फलसफियाना तहरीक, ना मजमूआ अकायद, बल्कि ऐन जिंदगी। इस्लाम के मसाइल भी जिंदगी के मसाइल हैं जो इंसान को हर लहजा पेश आते हैं और जिनके सही हल पर इसके हिफज व बका, तरक्की और नशोनुमा का दारो मदार है। मैंने अर्ज किया, मुस्तशरकीन ने तो इस बाब में जो रवश अख्तियार कर रखी है अजीबो गरीब है। इनकी कोशिश ये होती है कि आलम इस्लाम या आलम इस्लाम पर कलम उठाएं तो इसके हर मज़र का मुब्द इस्लाम से बाहर किसी दूसरी तहजीब या फलसफा में तलाश करें। इनका कहना तो ये है कि आलम इस्लाम में कलाम की इब्तदा अभी ईसाइत के जेर असर हुई। 1, अहले मगरब के इस दावे की असास इस दावे पर है कि यहूद ने फिक्रे यूनान की रायत से अकायद मजहब की तबीर चूंकि फलसफियाना अंदाज में की थी, लिहाजा यही कुछ ईसाइयों ने कहा। मुसलमानों ने इस मिसाल से फायदा उठाया और इनके कायम करदा रास्ते पर चल निकले। यहूदों नसारा और मुसलमानों के मुतकल मानना रुझानात एक से थे। इस्लामी इलम कलाम का मुताल बानिगाह गायर किया जाए तो यह दावा सरता सर गलत साबित हो जाता है, इसकी बिना चंद सतही मुशाहबतों पर है। हम भूलते हैं कि जब मसला एक हो, यानी अकल और ईमान के तजाद या हम आहंगी का, तो इस पर जिस लिहाज से भी गौर किया जाए, बावजूद इख्तलाफ चंद दर चंद मुशाहबतें जरूर पैदा हो जाएंगी। इस सिलसिला में सिर्फ इतना कह देना काफी होगा कि यहूदी और मसीह इल्मुल कलाम का मेराज कमाल इस्लामी इल्मे कलाम से ना सिर्फ मुखर है, बल्कि इसका मरहूने मिन्नत भी मजीद बरां इस्लामी इल्मे कलाम ने, जहां फिक्र हाजर का रास्ता साफ किया है और इसके मसाइल और मनाजात को सही शक्ल दिया, वहां यहूदी और मसीह इल्मे कलाम की तहरीकें सरतासर अकीम और बेनतीजा रहीं। सफा नंबर 154। मैंने इस सिलसिला में रसाला जामिया दिल्ली में अपने मजमून मज़ाहिब इस्लाम की इब्तदा का जिक्र भी किया था कि हजरत अलामा के इरशादात से मेरे अपने ख्यालात की इस्लाह हो जाए। मैंने अर्ज किया, मुश्तशरकीन की राय है कि मजहब इस्लामी के नशोनुमा में भी मसीही असरात कार फरमा थे। दो, बकौल बी डी मैकडोनल्ड, डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम थियोलॉजी द मुस्लिम क्रीड में राकमुल हरूफ ने इसी किस्म के दावों के पेश नज़र ये लिखा था कि अगर इनको सही मान लिया जाए, तो ये मानना भी लाजम आएगा कि मसीह असरात पर फख्र करना कोई अच्छी बात नहीं। इनके असरात से आलम इस्लाम का जहन हकायक की बजाय लातायल बहसों में उलझ गया। सानिया, ये दावा यूं भी गलत है कि आलम इस्लाम में फ़िरकाबंदी का जहूर जिन असबाब की बिना पर हुआ, इनकी नवीयत सियासी और इज्तमाही थी। इन्हीं जिन मसाइल में इख्तलाफ था, वो जिंदगी और इल्मो इल्म के अमल के मसाइल थे। इनका फलसफियाना शाखसाना बाद की चीज़ है। मसीह दुनिया में इसके बरक्स मसाइल की नवीयत बज़ाहिर फिक्री और मबाद तबई थी, लेकिन फिल हकीकत लफ्जी के महज एक आयोटा अंग्रेजी में आई की मौजूदगी और अदम मौजूदगी पर देर तक सिलसिला बहस व निजाह जारी रहा। सालसन, वो असरात भी जिनके मुतल्लिक ख्याल है कि खारिज से इस्लाम में दाखिल हुए, किसी एक मजहब या एक खित्ते से मखसूस नहीं थे, बल्कि इस वक्त की ज़हनी फिजा में पहले से मौजूद थे, जिससे आलम इस्लाम को साबका पड़ा। ज़रूरी नहीं था कि ये असरात किसी एक मजहब या इससे तल्लक की बदौलत मरतब होते। यूं भी इनके खिलाफ जो रद्द अमल हुआ और इन पर जिस अंदाज से गौर किया गया, इनकी नवीयत जुदा गाना थी। दरअसल इस मजमून का ख्याल इन हवाशी को देखकर पैदा हुआ जो मौलाना मोहम्मद अली ने, सफा नंबर 155, मैकडॉनल्ड की किताब अल हयात इस्लामिया का नशोनुमा पर लिखे थे। मौलाना ने लिखा था, द आइडिया वर इन द एयर। इनका कायदा था कि जिस किताब का मुताल करते, बिलखसूस मुश्तरकाना तसनीफात का बानिगाह नकद व तफसस करते, लिहाजा जहाँ कोई अमर काबिल गिरफ्त देखते, वहीं हवाशी पर अपनी राय का इजहार फरमा देते। उन्होंने अपना जाती कुतुब खाना जामिया मिलिया इस्लामिया की नज़र कर दिया था। क्या अच्छा हुआ अगर अरबाब जामिया की तवज्जो से मौलाना के ये हवाशी एक बकायदा शक्ल में मरतब हो जाए। मौलाना बड़े खुश कलम थे, जो कुछ लिखते नहायत साफ साफ, बड़ी बेतकल्फी और सादगी से। फिर जैसे ये हवाशी पुरलुत्फ होते, वैसे ही बरमहल और ख्याल अंगेज। फरमाया, मुश्तरकीन की गलतियों का क्या पूछना है, इन लोगों के चंद एक मुतय्यन नज़रियात हैं और चंद एक मुतय्यन मकासद, लिहाजा कोई भी मसला हो, वो अपने मतलब की राय कायम कर लेते हैं। नंबर एक, हजरत अलामा के नज़दीक मजहबी और सियासी मुलहजा हो। मुजल्ला इकबाल लाहौर, शुमारा जनवरी 1927। नंबर दो, हालांकि मगरब में और भी अहले इलम हैं जिन्होंने अपने अपने नुक्ते नज़र से इस्लाम और इस्लामी तहजीब व तमद्दन का मुताला किया है और कर रहे हैं, इनकी राय भी अपनी जगह पर वक़्त से खाली नहीं, लेकिन इनके मकासद चौंके इन मानों में मुतय्यन नहीं जिन मानों में मुश्तरकीन के, लिहाजा बासबाब नाफाकफियत कोई गलत नतीजा कायम करें तो दूसरी बात है, कसद ऐसा नहीं करते। अरशाद व मसीह अस्कुला सिस्टम्स का मसला तो समझ में आता है कि एक तरफ कलीसा के अकायद थे, दूसरी जानब यूनानी फलसफा, लिहाजा मसीह दुनिया की कोशिश के इनमें बाअहम तबीक पैदा करे, लेकिन आलम इस्लाम को तो फलसफा यूनान के अलावा कई एक अकली और मजहबी तहरीकों से साबका पड़ा। फिर ये सब तहरीकें बाअहम गलत मलत होकर एक नई शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। सफा नंबर 156, यूं सती नजर से देखा जाए तो हम इस बात में जैसी चाहे राय कायम कर सकते हैं, ख्वा ये राय हकीकत के खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन गौरतलब अमर यह है कि हिंदू, बुद्ध और चीनी इल्मुल कलाम का जहूर तो खुद इन मजाहिब के अंदर से हुआ, गोया इनका मसला अकल और ईमान के बाहम इश्तराक और हम आहंगी का था, ना कि किसी मखसूस फलसफे से तत्बीक का। मुसन्नफ की गलती ये है कि वो अकल और ईमान के बाहम इश्तराक और हम आहंगी की हर कोशिश को कलाम, बल्कि कहना चाहिए कि इसको लास्टम से तबीर करता है। फरमाया, तुम्हारी बातों से तो ये जाहिर होता है जैसे मुसन्नफ के नजदीक मेमा नसा भी कलाम ही की एक शक्ल है, हालांकि ये हिंदू फलसफे की एक फर्ग है और हिंदू फलसफा इन अमाल व अफाल, हकायक और वारदात की तशरीह जो हसूल मार्फत का जरिया है और जिनको अकली अंदाज में पेश किया गया, तो इसलिए कि दूसरे भी इसे फायदा उठा सकें। नंबर 2, यूं हिंदू फलसफे के मुताले में एक नुक्ता नजर मिल जाता है। रकम अल हरूफ की राय में हिंदू फलसफे के हिंदू मुरखीन भी, जिनकी कोशिश है कि इसकी तबीर मगरबी फलसफे के रंग में करें, गलती पर है। अहले मगरब का यह ख्याल कि फलसफा जब भी फलसफा है कि इसका नशोनुमा मगरबी नमूने पर हो, सही नहीं। अरशाद हुआ मुसन्नफ की और या गलतियां नजर आईं। मैंने अर्ज किया, मुसन्नफ कहता है कि मुसलमानों की इल्मी सरगर्मियां कुरान पाक पर मुर्तकज हैं, लिहाजा लिहाजा इनका नुक्ता नजर इल्मी नहीं था, अकीदा परस्ती का था। फरमाया, क्या इस्तदलाल है, मुसन्नफ समझा ही नहीं कि वो इल्मी रूह जिस पर आज यूरोप को नाज है, कुरान पाक ही की पैदा करता है। मुसलमान ना होते तो आज इल्मो हिकमत का ये रंग ना होता। सफा नंबर 157, नंबर 1, मैंने अर्ज किया, मुसन्नफ तो यहाँ तक कहता है कि मंतक इस्तकरा, लिहाजा हमारा इस्तकराई और तजर्बी मनहाज भी यूरोप ही की इजाद और यही मनहाज था जिससे इल्मुल कलाम यानी अस्कूला सिस्टम्स का अजाला हुआ। अरशाद हुआ, मुसन्नफ की बेखबरी इस हद अफसोसनाक है, इस्तकरा मुसलमानों की इजाद है, इस्लाम ही ने ख्याली के मुकाबले में हकीकी और मुजरद के बरक्स महसूस पर जोर दिया है। तजर्बा व मुशाहदा और इल्मो अकल को अदराक हकीकत का जरिया ठहराया, इंसान को दावत दी कि अपनी इस्तदाद इल्म से काम ले। नंबर 2, देखिए तश्कील जदीद, खुतबा पंजम, बहस खत्म नबूवत। फरमाया, इस्तकरा की रवायत आलम इस्लाम से होती है। बीकन ने बेशक इसी मौजू पर कलम उठाया, लेकिन मुसलमानों की तहरीरों से इस्तफादा करते हुए नोम आर्गियान नाम ही के एतबार से एक नई मंतक है, लेकिन मुताला कीजिए तो पता चलेगा कि इसमें इब्ने तमीमा और सहरवर्दी की अबारतें जू की तू मौजूद हैं। मुसन्नफ ने ये कैसे कह दिया है कि मनहाज इस्तकरा यूरोप की दरियाफ्त है, इस्तकरा और तजर्बे का सिरा मुसलमानों के सर है। नंबर 3, नोम और गोनोन आर्गियान के मानी है आला, और ये वो नाम है जो अरस्तू के शारख अस्कंदर अफरोसियासी ने इस मंतकी रसायल के लिए तजवीज़ किया। मतलब ये था कि मंतक एक फ़ान है, ये इलम नहीं है, हसूल इलम का आला है। नंबर 1, सहरवर्दी यानी शेख मकतूल शहाबुद्दीन या सहरवर्दी की तसनीफ हिकमतुल अशराक और इमाम इब्ने तमीमा के रसायल बिलखसूस अलरद अली अल मंतक में मशहूर सूफी बुजुर्ग शहाबुद्दीन अबू हफस उमरू इब्ने अब्दुल्ला सहरवर्दी ने भी अपनी किताब कशफुल नसा सफा नंबर 158 अल इमानिया व कशफ अल फजाइज अल यूनानिया में यूनानी फलसफे का रद्द किया है। 2, यूं कहने को तो इस्तकरा की रवायत अरस्तु तक पहुंचती है, लेकिन वो मनहाज इलम जिसकी बिना पर इस्तकरा तजर्बे और इम्तिहान पर है, आलम इस्लाम ही में वजह हुआ। मनहाज तजर्बी के बारे में तो सार्टन को खुद भी इतराफ है कि इब्न अल हैशम की बदौलत इसमें खासी तरक्की हुई। अरशाद हुआ, इस मुकदमे का मुकदमा लिखना चाहिए। मैंने अर्ज किया, मेरा ऐसा ही इरादा है, लेकिन किताब बड़ी जख्मीम है और जहाँ तक किसी एक इलम या इसके मखसूस मुबहस का तल्लक है, इस पर माहरीन इलम ही कलम उठा सकते हैं। अलबत्ता किताब का एक तमहीदी बाब है जिसमें मुसन्नफ ने इल्मो हिकमत के इर्तका से बहस करते हुए तरीके इलम पर भी मुख्तसरन तबसरा किया है। गो नाकस और कई पहलुओं से गलत मफरूजात पर मबनी है। मेरी कोशिश हत्तुल बसा ये होगी कि इस जमन में मुसन्नफ की गलतियों की तरफ इशारा करूं। नंबर 3, अहले मगरब के नज़दीक साइंस ने अर्ज़ यूनान में जन्म लिया। कबल यूनान का ज़माना कबल साइंस का ज़माना है। यूनान को ज़वाल हुआ तो जदीद यूरोप के ज़हूर तक ये सिर्फ यूनानी रवायात थी जिसने साइंस को थोड़ा बहुत सहारा दिया। गो ये रवायत अहले शरक के हाथों मस्क होती रही हत्ता कि अहले मगरब उठे, साइंस का अहया हुआ और फिर इसमें हर जहत से तरक्की और नशोनुमा होने लगा। लेकिन कतई नज़र इससे कि अहले यूरोप अब खुद ही इस नज़रिए को खैरबाद कह चुके हैं। सोचने की बात यह है कि जब तक जहन इंसानी मौजूदा महसूस वाकई और मरई की कदरों कीमत से अशना ना होता, इसमें वो रूह पैदा ही नहीं हो सकती थी जिसे आज इल्मी रूह या साइंटिफिक स्पिरिट से ताबीर किया जाता है। अब ये मालूम है कि फिक्रो नज़र का ये इनकलाब इस्लाम ही का पैदा करता है जिसने महसूस व मौजूद और वाकई व मरई को आयात अहलिया से सफा नंबर 169 से तबीर किया और इस पर गौर व फिक्र की दावत दी। लिहाजा साइंस को भी साइंस का दर्जा हासिल हुआ तो सही मानों में आलम इस्लामी की बदौलत। मैंने ये भी अर्ज किया कि अलूम इस्लामिया और मुसलमान अहले इलम के बारे में मुसन्नफ की मुतअद्दद फरोगजश्तें काबिल तवज्जो है। अर्शाद हुआ इस्लामी अलूम व मारफ के बारे में हमारी मालूमात अभी तक बड़ी नाकस हैं। फिर किस कैसी कैसी नादर तसनीफात थीं जो जमाने की दस्त बुर्द में जाया हो गईं। एक, इनकी खिदमात इल्मे सही इल्मी दर्जे और मुसलमानों की बदौलत अलूमे इर्तका और नशोनुमा के बारे में। नंबर 2, और कितनी हैं जिनकी फहरिस्त भी अभी तक मरतब नहीं हुई। मसलन स्कोर रियाल स्पेन ही का जखीरा कुतब है और कितनी है जो खुदा जाने किस किस गोशा खमोल में पड़ी हैं। आसमान अबर आलूद था, मीम शीम आ गए। थोड़ी देर बैठे फिर साथ वाले कमरे में चले गए। चौधरी साहब तशरीफ ले आए। ख्याल था कि राजा साहब और करशी साहब आते ही होंगे। अली बख्श ने चाय का एहतमाम किया। देर तक सोबत रही।